ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ तत्र श्रीमद्भागवतं स्कंद 7 अध्याय 8 भगवान नरसिंह द्वारा असुर राज हिरण्यकश्यप के वध और देवताओं के द्वारा स्तुति। श्री रुद्र उवाच कोप काल जुगांतस्ते हतोयम असुरल्पका तत्सुतं पायुपश्रुतं भक्तं ते भक्तवत्सला। श्री रुद्र उवाच। शिव जी ने स्तुति की। कोप काल ब्रह्मांड का संहार करने के लिए आपकी क्रोध का उचित समय, आपकी क्रोध का उचित समय, जुग अंत कल्प का अंत, ते तुम्हारे द्वारा हतः मारा गया अयम यह असुर अल्पका ये नगण्य असुर, तत्सुतम उनके पुत्र प्रह्लाद पाही रक्षा करो, उपश्रुतम जो शरणागत होकर आपके पास खड़ा है, भक्तम भक्त ते तुम्हारा भक्तवत्सल हे भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल प्रभु। अनुवाद अर्थात परिचय श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की सह। मेरे पीछे इसके अनुवाद बोलिए। शिव जी ने कहा कल्प की अंत ही आपकी क्रोध का समय होता है। अब जबकि यह नगण्य असुर हिरण्यकशिपु मारा जा चुका है, हे भक्तवत्सल प्रभु कृपा करके उसके पुत्र प्रह्लाद महाराज की रक्षा करें, जो आपके निकट पूर्ण शरणागत भक्त के रूप में खड़ा हुआ है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा है। सृष्टि में 3 प्रक्रम होता है, सृजन पालन तथा अंत में संहार। संहार के समय प्रत्येक युग के अंत में भगवान क्रोध होते हैं और यह क्रोध होने का कार्य शिव जी द्वारा संपन्न होता है, अतः वे रुद्र कहलाते हैं। जब भगवान हिरण्यकशिप को मारने के लिए अत्यंत क्रोध हुए तो सभी लोग उसकी मुद्रा को देखकर भयभीत थे, लेकिन शिव जी भयभीत नहीं हुए क्योंकि उन्हें ज्ञान था कि भगवान का क्रोध भी एक लीला है। उन्हें पता था कि उन्हें ही भगवान की क्रोध की भूमिका निभाना पड़ेगी। अर्थात स्वयं शिव जी जब प्रलय करना होता है तो क्रोध की रोल करते हैं। काल की अर्थ है शिव जी बाप भैरव तथा कोप का अर्थ है भगवान का क्रोध। इन दोनों का संयोग से निर्मित कोप काल का प्रयोग प्रत्येक कल्प की अंत के लिए हुआ है। भगवान भले ही अत्यंत क्रोध क्यों ना प्रतीत हो, वास्तव में वे अभक्त के प्रति सदा वत्सल रहते हैं क्योंकि वे अव्यय आत्मा है, अर्थात वे कभी च्युत नहीं होते, अतः वे क्रोध रहने पर भी भक्तों के प्रति वत्सल बने रहते हैं। अतः शिव जी ने भगवान को याद दिलाया कि प्रह्लाद महाराज के प्रति पितृतुल्य वत्सल बने, जो उनकी बगल में विनीत शरणागत भक्त की तरह खड़े थे हाथ जोड़कर। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात श्रील प्रभुपाद की जय। तभी भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो चुके हैं और सारे देवता नरसिंहदेव की प्राकट्य को सेलिब्रेट कर रहे हैं। किस प्रकार? स्तुति के द्वारा। कोई अभिषेक नहीं हो रहा है अभी, सभी देवता क्या कर रहे हैं? स्तुति के द्वारा भगवान की जो प्राकट्य हुआ, आविर्भाव हुआ, उस आविर्भाव को पालन कर रहे हैं। तो पहले सो बड़े बड़े देवता ब्रह्मा, उसके बाद शिव, फिर इसके बाद इंद्र, सो सीरियली आ रहे हैं स्तुति करने के लिए। तो रुद्र जो भगवान की तमोगुण को निभाते हैं, तो वो स्तुति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? असुर अल्प का अर्थात ये हिरण्यकशिपु जिनके पास बहुत कम शक्ति था, आपकी शक्ति की तुलना में बहुत कम शक्ति था, ये हतो अयम, ये असुर अभी मर चुका है, लेकिन प्रभु आप ऐसे उनको मार दिए कोप करके, क्रोधित होकर के। कहते ये जो कोप है ये जुगांत, मतलब जुग की अंत होने पर, अर्थात जब आपको समय आता है, आप प्रलय के समय आता है, तो आप कोप का क्रोध की रूप धारण करते हैं। कोप काल जुगांत ते क्रोध, ये तो आप क्रोध किए, क्रोध से उनको मारे, परंतु जो उनकी पुत्र हैं तत्सूतम पाही, उनकी पुत्र को आप रक्षा कीजिए। क्यों? शिव जी कह रहे हैं ते भक्तम, ये आपकी भक्त हैं, तत् पाही। कहता अच्छा मेरे भक्त कैसे हैं? कहता उपश्रुतम, क्योंकि आपका वो शरण में है, क्योंकि हाथ जोड़ करके खड़ा है, वो आपकी कृपा की भिक्षा कर रहा है। तो मानव फिर भगवान ये सोच रहे हैं मैं किसको रक्षा करता हूं, तो रुद्र जी कहते हैं आप भक्तों को रक्षा करते हैं, क्योंकि आपकी वचन है न मे भक्त प्रणश, और आप शरणागत भक्तों को रक्षा करते हैं, क्योंकि आपका गुण क्या है? भक्त वत्सल, आप अपने भक्त के प्रति बहुत वत्सल रहते हैं, जैसा बछड़ों के प्रति गाय का स्नेह। तो पहला ये हम चर्चा करेंगे, ये रुद्र उवाच, जिसको प्रभुपाद तात्पर्य में ये स्पष्ट किए हैं। जब क्रोध के समय आता है कोप काल, तो वही जो शिव हैं वो रुद्र बनते हैं। तीसरा स्कंद की 12वां अध्याय में ये सृष्टि के उपक्रम में वर्णन है कि किस प्रकार ये शिव उत्पन्न हुए और शिव जी से एकादश रुद्र उत्पन्न हुए, और प्रलय के समय यही रुद्र ही भैरव के नाम में ये सारे संसार को ही क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। तो जब कुमार को सृष्टि किए ब्रह्मा जी, तो ये चार कुमार को आदेश दिए कि आप प्रजा को वृद्धि करो, परंतु ये चार कुमार ये सब वासुदेव परायण और ऊर्ध रेतस, जो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने के कारण उनकी मन भगवान वासुदेव में एकाग्र हो चुका था, इसलिए उन्होंने इस प्रकार पिताजी के आदेश को उल्लंघन करके ब्रह्म के दर्शन के लिए उन्होंने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार नहीं किए। तो ब्रह्मा जी प्रजापति का मुख्य हैं, और ऐसे पुत्रों की दृष्टता को देखकर के उनका मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, पिताजी की आज्ञा को उल्लंघन किए, क्योंकि उस समय ब्रह्मा जी रजगुण से अभिभूत थे, उनका मन में रजगुण था, प्रजा उत्पन्न करने की आकांक्षा थी। परंतु सोचे ये बेटा तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, भगवान को दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए जो क्रोध उत्पन्न हो गया था उसको प्रकटित करने नहीं दिए, अर्थात उसको दबा के रखे। परंतु जब हम काम और उसके नेक्स्ट स्टेप जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है उसको दबाने पर भी उसकी प्रभाव पड़ जाता है। ब्रह्मा जी जैसे महान व्यक्ति के ऊपर भी इस क्रोध का प्रभाव पड़ा और उनकी आंख की भौं से एक नीला और रक्त जो तमोगुण और रजगुण का दोनों मिश्रित स्वरूप था उस समय एक संतान उत्पन्न हुआ आंख की भौं से। और ये उत्पन्न होते ही इतनी जोर से चिल्लाने लगा रोते हुए, वाह बहुत जोर से आवाज किया। ब्रह्मा जी के वाह आप तो बहुत अच्छे तरह से रोए हो रोदसी, इसलिए तुम्हारा नाम क्या पड़ेगा? रुद्र। सव्ये रोदंग देवानंग पूर्वजंग भगवान भव। ये जितनी सारी प्रजा सृष्टि हुए हैं चार कुमार के बाद, ये तो पहला ही प्रजा है ये भव। तो भगवान कहे अर्थात ब्रह्मा जी कहे कि देखो तुम अच्छी तरह से रोए हो इसलिए तुम्हारा नाम क्या पड़ेगा? रुद्र। रोद रोदी सुरश्रेष्ठं स्वद्वेगं इव बालकः तत् स्वाम अभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजा। और इतना नहीं कह के पिताजी हमारा तो नामकरण कर दिए, काम तो बताओ, अब इतना में नहीं चलेगा, बोलो बोलो हम क्या करें, और हमको रहने के लिए इतना जगह दो, कहां हम ठहरे। ये भी पिता की कर्तव्य है, केवल बच्चा को जन्म नहीं देना है, उसको खाने पीने की व्यवस्था भी करना है, रहने के लिए सब। तो नामकरण संस्कार के बाद फिर रहने के लिए स्थान दिए। तो पहले कहे कि तुमको, तुम 11 लोग हैं एक साथ, ये 1 से 11 हो गए। एक तो सिर्फ रक्त और लोहित श्याम वर्ण की नीला वर्ण की उत्पन्न हुए, परंतु ये सब 11 हो गए रोते रोते। अच्छा तुमको रहने के लिए मैं 11 स्थान भी देता हूं, तुम्हारा अलग अलग फ्लैट होगा, कोई एक साथ झगड़ा नहीं करोगे। कहां कहां पर रहना है? इंद्रियाणिम असुर व्यामं हृदि इंद्रियाणि व्यसुर व्ययमं वायुर अग्नि जलं मही सूर्य चंद्र तपस्सैव स्थानान अग्रे कृतानि ते। तो पहले कहे कि तुम हृदय में रहो, तो काम की उत्पन्न स्थल बा उत्पत्ति स्थल है कहां? हृदय। तो जब हृदय से उत्पन्न होता है तो फिर वो क्रोध की रूप धारण करता है, तो हृदय से फिर इंद्रियों की ओर ट्रांसफर होता है। हृदि इंद्रियाणि, कौन सी इंद्रियों में ट्रांसफर होता है ये क्रोध? आंख में, हृदय से आंख, फिर आंख से कहां ट्रांसफर होता है? वाणी से, ये इंद्रिय से, फिर वाणी से हाथ से, तो हाथ से फिर लात, ऐसे ट्रांसफर होता है क्रोध। देख सकते इसे क्रोध की डिग्री जब बढ़ता है ना तो इसी प्रकार होता है ट्रांसफर। तो ये हृदय फिर आंख पड़कता है, फिर उसके बाद प्राण वायु। जब हम बहुत क्रोधित हो जाते हैं तो क्या होता है? जोर जोर से सांस लेते हैं, ऐसे उतर पड़ते हैं मरेंगे नहीं तो मारेंगे। हाँ प्राण वायु जोर जोर से श्वास छोड़ते हैं। तो इसी प्रकार जो विषय से काम, काम से क्रोध, धायतं विषयान पुंसा संगं ते सुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधा भी जायते। फिर ये क्रोध के द्वारा जब हमारा इंद्रिय और मन प्रभावित हो जाता है तो क्या होता है, क्या होता है, बुद्धि नाश। और ये बुद्धि नष्ट होने पर फिर हमारे सर्वनाश होता है, बुद्धि नाश कणस, क्योंकि ये सब रुद्र तत्व है और सब हम शिव जी के आराधक हैं इस प्रकार परोक्ष रूप से। फिर तीसरे स्थान दिए आकाश। तो आकाश में क्या होता है, आकाश कैसे रुद्र तत्व है, कौन बता सकता है? जब बादल गरजता है आकाश में, ये रुद्र तत्व है। और वायु, चौथा स्थान दिए वायु। वायु कैसे रुद्र तत्व है, तूफान आ जाता है, हाँ फिर आता है। अग्नि, अग्नि तो जानते हैं, वो तो पहले से स्वभाव से अग्नि तत्व है, रुद्र तत्व है, जलाता। फिर जल, जल कैसे है, सुनामी, सुनामी भी है। और दूसरा क्या है, समुद्र का लहर भी वो रुद्र तत्व है। वायु के संस्पर्श में जो कभी शांत नहीं है, हमेशा है ज्वार के रूप में, लहर के रूप में आता है। पृथ्वी, पृथ्वी कैसे है, हाँ हाँ भूकंप जब होता है ये भी रुद्र तत्व है। सूर्य जानते तो, सूर्य तपाता है, पसीना निकल जाता है। फिर चंद्रमा को दिए, चंद्रमा कैसे रुद्र तत्व है, जो शीतलता प्रदान करती है। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री राधा राधिका रमण जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराण की जय। चंद्रमा कैसे रुद्र तत्व के प्रतिनिधित्व करती है, हाँ हाँ क्या, ज्वार भट्टा नहीं, चंद्रमा प्रत्यक्ष रूप से, चंद्रमा से क्या निकलता है, ताप की शीतलता, ताप की शीतलता निकलता है, क्या शीतलता, जो बहुत जोर ठंडी होता है, कड़की ठंडी है, ये भी चंद्रमा के कारण है। बहुत जब शीतल हो जाता है जाड़ा में, तो ये चंद्रमा का दिए हैं। चंद्रमा के द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शीतलता के कारण जब हृदय गति रुकने लगता है, जो घुटना छोड़ता, बहुत ठंडी, रजाई भी काम नहीं करता। फिर आखिर में ये स्थान दिए मुनियों की तपस्या। दुर्वासा जैसे व्यक्ति कहते वहां रहिए, आपको शांति मिलेगी। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी रुद्रों को स्थान दिए। और पिताजी से जब पूछे हम क्या करें, तो ब्रह्मा जी कहे कि तुम लोग संतान उत्पन्न करो, इसलिए तो तुम प्रकट हुए हो। तो उन्होंने सब संतान उत्पन्न करने में लग गए, तो पोता पोते सब हो गए, पोता पोती। लेकिन जितने सारी सब संतान हुए, ये फिर क्या किया, जो सृष्टि हुआ था, ब्रह्मा जी पहले सृष्टि किए थे, सबको उन्होंने नष्ट करने लगे। तो ब्रह्मा जी पूछे बेटा ये क्या कर रहे हो, मैं तुमको उत्पत्ति करने के लिए बोला, तुम इसको संहार कर लिए। कहते पिताजी यही तो हमारे काम, आप बताएं। कहते अभी चुप बैठ जाओ, अभी कुछ नहीं करना है। अरे ये काम तो प्रलय के समय करना है, प्रलय अंतम, अभी नहीं। तो अभी क्या करें बताओ ना, हम तो काम के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति काम किए बिना नहीं रह सकता, रजोगुण और तम। तो ब्रह्मा जी कहे बेटा आप लोग जाओ, चुपचाप जाओ और तपस्या करने में लग जाओ, ठीक है, जब काम पड़ेगा मैं तुमको बुला लूंगा सबको, जैसे भी है, फोन फान करके जैसे भी शिव जी बुला लेते हैं अंत समय में प्रलय के लिए। तो ये ही रुद्र व भैरव के नाम से जाना जाते हैं। तो फिर उनके 11 नाम भी दिए। उनका नाम था मन्यु, मनु, महितम, महान, सीप, रुतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव तथा धृतव्रत। तो इसी प्रकार अभी भी ये लोग क्या कर रहे हैं, जंगल में जाकर सब तपस्या कर रहे हैं और ये बहुत उत्पात करते हैं। कहते हैं ये रुद्रों का अनुजाई भी है और उनकी भी भक्त भी है, शिष्य है, जो टेररिस्ट है, है ना, ये भी सब रुद्र के सब भक्त है शिव जी के, क्योंकि ये लोग भी सब संसार को क्षय करते हैं। ठ्याय जगत हितम। तो ये जो रुद्र तत्व है तो ये जुगांतम, जो जुग की अंत होता है उसी समय वो आते हैं, कार्य करते हैं। तो रुद्र यही प्रार्थना कर रहे हैं, क्या अभी जुग किस अंत समय आ गया है? कहते हाँ, ये जुग की वास्तविक अंत समय है। ऐसे देखा जाए भगवान कहते कल्पक है, जो वह सृष्टि होता है और उसका जो वो क्षय होता है इसको कहते कल्पक है, पुनस्तानी कल्पादो विसृजा मिन। परंतु अभी तक कल्प का समय नहीं हुआ है कि ब्रह्मा जी का जो दिन की अंतिम अवस्था तो नहीं आए, लेकिन फिर क्यों संहार कर दिए? कहते वास्तविक जब तमोगुण का वृद्धि हो जाता है उस समय जुग का अंतिम अवस्था आता है और भगवान का प्राकट्य उसी समय होता है जब पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है असुरों का, और जब बहुत लोडिंग हो जाता है तो भगवान जुग के अंत में आते हैं। संभवामी जुगे जुगे। अब देखिए द्वापर जुग के अंत में भगवान कृष्ण आए और जियो ही वो छोड़ के चल गए, फिर वो युग संध्या था उस अवधि में फिर कलिजुग प्रवेश किया। तो फिर उसी प्रकार कलिजुग की जब अंत अवस्था आ जाएगा अर्थात म्लेच्छ प्राय सब हो जाएंगे, यहां तक राजा लोग सब म्लेच्छ जैसे कार्य करेंगे, तो उसी समय भगवान फिर कल के रूप में प्रकट होंगे और म्लेच्छों को खचा खच ऐसे काटते रहे। म्लेच्छ निधिया निधानम। तो वास्तविक भगवान ब्रह्मा जी की जब दिन समाप्त हो जाता है तो उस समय भी प्रलय के रूप में प्रकट होते हैं, जैसे कि अनंत देव के मुख से अग्नि निकलता है और सबको जला करके राख बना देता है। 36,000 साल तक अनंत देव के मुख से क्या निकलता है? आग निकलता है, अर्थात देवताओं की दिव्य 100 साल तक। तो उसके बाद फिर 36,000 साल तक बारिश होता है, जो कहते हैं प्रलय पयोधी जले, तो पूरा जलमग्न हो जाता है, आंशिक प्रलय। तो उसी प्रकार जब ब्रह्मा जी की पूरा 100 साल हो जाता है, उनके जीवन अवधि समाप्त हो जाते हैं, तो उस समय भी प्रलय होता है। तो ये भगवद गीता में प्रभुपाद दिए हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं जान्ति मामिकं कल्पखेय पुनस्तानि कल्पादो विसृजामिहम्। कल्पखे का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर, ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे 4,30,000 वर्ष की तुल्य है, रात्रि भी इतनी ही वर्ष की होती है। ब्रह्मा के एक महीना में ऐसे 30 दिन तथा 30 रात होते हैं और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीना होते हैं। ऐसे 100 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तब प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में ही चली जाती है। ध्यान रखिए, जब प्रलय होता है तो जो ब्रह्मा जी के 100 साल पूरा हो जाता है, जो अवयव सृष्टि हुआ था भगवान के द्वारा, ब्रह्मा समेत सारे जीव भगवान के अंदर चल जाते हैं। परंतु आंशिक प्रलय में, जिसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय में, ऐसा नहीं होता है। नैमित्तिक प्रलय में सारे अवयव ब्रह्मा के शरीर में रहते हैं, फिर ब्रह्मा जी से फिर सृष्टि होता है। परंतु इसी प्रकार जो भगवान की सृष्टि और संहार ये काल के द्वारा होता है और ये काल ही वास्तविक सृष्टि और संहार की निमित्त कारण है। इसलिए भगवान कहते काल के रूप में मैं ही हूं, काल कलयताम अस्मि, काल अस्मि लोको ख्यकृत प्रवृत्त लोकान समाहर्तन विह प्रवृत्त। तो भगवान इस काल के रूप में कार्य करते हैं जिसको संहार कार्य कहा जाता है, उसको कहते भैरव, तो कहते ना काल भैरव। इसलिए जो लोग ये मजा मारना चाहते हैं सृष्टि में तो थोड़ा से देखना चाहिए कि कितना भयानक है स्थिति ये रुद्र तत्व। इसलिए स्वयं शिवजी भी स्तुति करते हैं और कभी कभी ये रुद्र की जो मूल स्वरूप है वो क्या है, संकर्षण। ये संकर्षण भी बहुत गुस्सा करते हैं, जैसे कि 36,000 साल तक उन्होंने मुख से आग निकालते हैं। तो पांचवा स्कंद की 25वां अध्याय में जो संकर्षण के वर्णन है उसमें 13वां श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जीव जब विमुख होकर के भगवान से अपने संबंध को तोड़कर के भौतिक संसार के भोग भोगता है तो संकर्षण जो प्रत्येक प्राणी का अंदर परमात्मा के रूप में है, जिसको हम खीरतों के साई विष्णु भी कहते हैं, उनका एक्सपेंशन है, वो हर जीव को यही चेतना प्रदान करते हैं कि आपस भगवान के पास लौट चलो। लेकिन वो इतने भोग में फंसे रहते हैं तो भगवान के आदेश को भी उल्लंघन करते हैं। तो उसी समय ये भगवान अनंत गुस्सा होकर के इस सृष्टि को जलाने लगते हैं। तो इसको कहते हैं ये डेमोनिक, जो कहते तमोगुण का वृद्धि होता है, डेमोनिक क्वालिटी का वृद्धि होता है। तो उसी समय भगवान भी इस सृष्टि को प्रलय करते हैं। इसमें भगवत गीता में है, काम आश्रित दुष्परंग दंभ मान मदन्निता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहन प्रवर्तन्ते शुचिव्रता चिंता अपरिमेयांच प्रलय अंतम उपाश्रिता काम उपभोग परमा एता बदिति निश्चय। प्रलय अंतम उपाश्रिता, ये लोग ऐसे ही आसुर की भावना से युक्त रहते हैं, असुचिव्रता कोई शुद्धता नहीं रहता है, और चिंता अपरिमेय उनका कोई सीमा नहीं है चिंता। और ये चिंता क्या है, काम उपभोग परमा लस्ट डिजायर, और उसको पूर्ति करने के लिए उन्होंने क्या करते हैं, अन्नायेन अर्थ संचयान। तो यही उनकी प्रलय के कारण हो जाता है। इसलिए कलयुग में लोगों का आयु क्यों कम है, प्रायण अल्पायु से सत्य, क्योंकि सभी लोग इसी प्रकार अनेक चिंता से जड़े, अनेक चिंता, इसलिए असमय में अकाल मृत्यु होती है, किसको हार्ट अटैक हो गया। पहले समय में पिता माता के सामने किसी की पुत्रों का व संतान का मृत्यु नहीं होता था, लेकिन कलयुग में दादा दादी भी है पोता का मृत्यु हो जाता है, क्योंकि दिन पर दिन आसुरी की भावना बढ़ रही है। असुर उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, काम उपभोग परमा, उनका फाइनल डेस्टिनेशन है काम उपभोग। देखो कितने बड़े बड़े मकान हम महल बना देते हैं, हिरण्यकशिपु कितनी योजना बनाया, लेकिन एक मुहूर्त में सब कुछ उनके डेमोनिक की सिविलाइजेशन नष्ट हो गया। परंतु आज की हिरण्यकशिपु के अनुजाई भक्त ये सोचते हैं और हम थोड़ा लंबा ड्यूरेशन प्राप्त करेंगे, खासकर पंजाबी बाग इस एरिया में सब बड़ा बड़ा महल है, सब हिरण्यकशिपु का जो भी है जो चिंता रखे हैं कि हम लोग दीर्घायु रहेंगे सुख भोग करेंगे, परंतु पता नहीं कभी टेररिस्ट अटैक करेगा और कभी भूकंप हो जाए, इसकी कोई परवाह नहीं करते, सिर्फ काम उपभोग, गाड़ियों में घूमना है। तो जितनी प्रकार की सब भावना है तो असुरों का ये कलिजुग में बढ़ता है। इसलिए कलिजुग के हर समय प्रलय होता है, कभी भूकंप हो गया, कभी सुनामी हो गया, कभी उत्तरांचल में बाढ़ हो गया, सब बह गए। क्योंकि ज्यादा जो डेमोनिक ये भावना है कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, इसलिए देवता लोग भगवान की स्तुति करते हैं। किस तमगुण से बच के रहे, स्वयं रुद्र जी जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कह रहे हैं, प्रभु आप अपने भक्तों के प्रति आप सदैव रहिए भक्त। बस भक्त का पहला गुण है प्रार्थना और प्रणाम। प्रार्थना और प्रणाम के द्वारा भगवान को प्रसन्न करता है, और भगवान को प्रसन्न करने से भगवान हमको प्रसाद देते हैं, कृपा देते हैं, और भगवान की कृपा से ही हम भगवान और भक्तों की महिमा को समझ सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में सभी स्थान में स्तुति है, कहते स्तुति परक संहिता। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है स्तुति परक संहिता है, हर स्थान में केवल स्तुति है। भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट हुए उस समय देवकी वसुदेव कोई अभिषेक नहीं किए, वहां स्तुति की। क्योंकि हम लोग प्रमादी हैं, प्रसाद नहीं चाहते हैं। और अर्जुन अपने भाव को प्रकट करते हुए भगवान कृष्ण के सामने ये स्तुति कर रहे हैं, सखेति मत्वा प्रसभं जदुक्तम हे कृष्ण हे जादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। कहते मेरी पागलपन हो सकता है, प्रमाद बा प्रेम से मैं आपकी महिमा को नहीं समझ पाया, इसलिए तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वं अहमीश मेढ्यम। तस्मात् इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, मेरे शरीर को आपके चरण में बार बार लेटाता हूं। प्रणिधाय कायम आप कृपा कीजिए। हम कभी कभी प्रणाम कर लेते हैं परंतु स्तुति नहीं करते, हाँ बांछा गड़पत्तर कर देते, परंतु हमारे मन में वही अभिमान रहता है, हाँ कोई गलती हो गया छोड़ो ऐसे मिट जाता है। परंतु उस भक्त के प्रति सद्भावना जागृत करना पड़ेगा, केवल प्रणाम करने से नहीं स्तुति करना पड़ेगा। दक्ष ने देखा बकरा के शरीर मिल गया, क्या करे, कम से कम चल जाए शिव जी के पास जाकर स्तुति कर ले। लेकिन वास्तविक ये शिव की महिमा को अच्छी तरह से नहीं समझे, वैष्णव की महिमा देखे कि शिव जी बहुत पावरफुल है और दूसरा कोई उपाय नहीं है, जाके स्तुति किए। परंतु उनका टेंडेंसी था अपराध करने का, वो पूरा मिटा नहीं था, सेवा करना चाहिए, स्तुति तो कर दी। इसलिए फिर उन्होंने दूसरे बार नारद के प्रति अपराध किया। इसलिए प्रार्थना स्तुति बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम ऐसे ही बेवकूफ बने रहेंगे, प्रमादी बने रहेंगे। जब तक भगवान के प्रसाद प्राप्त नहीं होता है, कृपा प्राप्त नहीं होता है, तब तक हम प्रमादी रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसी भक्ति का अभी नहीं रहेगा, झोली माला को हिलाते रहेंगे, सब नाटक है, अंदर से स्पृणा नहीं होगी। इसलिए अर्जुन स्तुति करने के बाद भगवान पूछे कि मैं इतनी सारी ज्ञान बताया, आपका मोह नष्ट हुआ, आप अपने स्मृति को फिर प्राप्त किए, जो चेतना है कृष्ण चेतना को प्राप्त कर लिए। अर्जुन ने हाथ जोड़ी कहा, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसाद आत्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। मेरे मोह नष्ट हो गए, इसलिए सब बड़े बड़े देवता ये मोहग्रस्त है, मुह्यन्ति यत् सूरय। क्योंकि भगवान की महिमा को तभी कोई जान सकता है भगवान की कृपा होने से, भगवान की कृपा होता है भगवान को प्रणाम और प्रार्थना से, भगवान तभी कहते हैं मैं आपको कृपा दे। ध्रुव महाराज प्रणाम किए, स्तुति किए, भगवान पहले तो उनके वेदमय शंख को स्पर्श कर दिए, वो महिमा समझ के। परंतु हम लोग क्या हैं, हम लोग अभिमानी हैं, अपने पास कुछ सामर्थ्य हैं, मेरे पास अच्छा गुण है, अपने क्रेडिट को देखते हैं। तो यस्तभावम अभिशुद्ध बोल जे अन्य अरविंदाख्य विमुक्त मानिना, मानिना शब्द को भी देखते मान। इसलिए भगवान की महिमा को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो प्रणाम करता है और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान की प्रसन्नता से हमको जब प्रसाद मिलता है, कृपा मिलता है, तो वही कृपा से हम भगवान को और भक्तों को ठीक तरह से समझ पाएंगे। अथापि ते देव पदम भुजं द्वयम् प्रसादलेशान गृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नम्। वो व्यक्ति भगवान को महिमा को समझ सकता। भगवान के कहने के मतलब नहीं है केवल श्री विग्रह है वा भगवान के स्वरूप है, कृष्णा कहने के मतलब है संपूर्ण जगत, उनके साथ ये सृष्टि के संबंध, खास करके उनकी परिकर भक्त साथ, उनकी महिमा को समझना चाहिए। दुर्वासा जी भटकने के बाद दोनों हाथ ऊपर खड़ा करी कहें, आज मुझे अनंत के दास की महिमा पता चला, अद्यम दृष्टु में, ओहो अनंत दासानं महिमं अद्यम दृष्टु में, मुझे आज दर्शन मिल गए। इसलिए शिव जी जानते हैं कि भगवान की ये जो क्रोध है, हम लोग जब क्रोध करते हैं तमोगुण में आते हैं, लेकिन भगवान के क्रोध क्या है, तमोगुण है, क्यों नहीं है। हाँ, क्या सिद्धांत है कि भगवान क्रोध करते हैं परंतु तमोगुण से प्रभावित नहीं होते। क्योंकि भगवान कहते हैं, न च मंतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उदासीना बदासीना असक्तं तेषु कर्मसु। क्योंकि मैं उदासीन हूं, उदासीन बत, लेकिन लगता है आसीन हूं। दूसरे दृष्टांत दिया जाता है, ब्रह्मण्यध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति च लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम मीमांसा। यहां तक कि जो भगवान को स्मरण करके ब्रह्मण्य अध्याय सारे कर्म को समर्पण करता है, वो भी कर्म की फल के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। फिर भगवान के बारे में क्या कहा जाए, जैसे कमल की पत्ता पानी में रहने पर भी पानी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसलिए भगवान की जो क्रोध है ये सिर्फ एक ड्रामा है, भगवान की रोना भी एक ड्रामा है कि नहीं। क्योंकि वो गुण को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि गुण उनसे प्रकट होता है। परंतु अन्य देवता कोई गुणाधीन गुणेश्वर नहीं है, गुणाधीश नहीं है, ये सब गुणाधीन है, इसलिए वो मोहग्रस्त होते हैं, कभी कभी विचलित होते हैं। परंतु भगवान कभी विचलित नहीं होते, उनका विचलन होना भी एक ड्रामा जैसे ही है। जैसे वो कौन था जो वसुदेव के सर को काट दिया, काट के देखा जाए साल लो, तो भगवान रोने लगे। वो फिर बाद में कहता, अरे ये तो सालों का जादूगरी है। पांडव लोग जब आग में जल गए थे, सारे संसार में फैल गया कि पांडव लोग मर गए हैं, तो भगवान भी रोने का नाटक किए, देखो भाई ने चल गए, बुआ जी चल गए, लेकिन जानते थे कि पांडव लोग सुरक्षित थे। ससुर जी का मृत्यु सत्वधाना के द्वारा हो गया, तो भगवान कहे, भैया क्या करे, ससुर जी का तो देहांत हो गया, अभी जाना पड़ेगा हस्तिनापुर, नाटक किए जाकर के, नहीं तो सत्यभामा जी गाली देते, हाँ देखो ससुर का डेथ हुआ, कोई भी आपका दुख नहीं है। तो भगवान सिर्फ एक जैसे निमित्त मात्र निभाते, और भक्तों को भी शिक्षा देते हैं, बाह्य लोग को व्यवहार करो और अंदर से निष्ठा रखो मेरे प्रति। तो भक्त भी कभी कभी रोल करना चाहिए, ड्रामा करना चाहिए, परंतु ये संसार के साथ अपने मति को नहीं फंसाना चाहिए। इसलिए मति को न फंसाने के लिए हमेशा ही प्रणाम और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, ताकि भगवान की कृपा प्रसन्नता प्राप्त हो, जिससे कि हमारी प्रमादीपन पागलपन दूर हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रश्न है प्रश्न। सदाशिव का जो मूर्ति है ये शुद्ध सत्व मूर्ति है सदाशिव, क्योंकि सदा का मतलब हमेशा ही, शिव का मतलब मंगलमय, तो सबका मंगल करते हैं। ये कभी तमोगुण में प्रभावित नहीं होता है, इसलिए सदाशिव लोग भी प्रलय के अंत में नष्ट नहीं होता है, इटरनल है। संकर्षण भी वो शुद्ध सत्वमय है, लेकिन भगवान के कार्यों को संपन्न करने के लिए क्रोध करते हैं, ये भी उनका एक अभिनय है, वो प्रभावित नहीं होते। लेकिन रुद्र और काल भैरव ये तमोगुण से जुड़ते हैं, तो ये ब्रह्म संहिता में आपको ये स्पष्ट मिलेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये तात्पर्य में लिखे हैं, क्या है, खीरम यथा दधि विकार विशेष जोगत संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु जंग संभुताम अपि तथा समपेत्य कार्च्यात् गोविंदम आदि पुरुषम तमं तथा। तो शिव और शंभु एक तत्व है, लेकिन सदाशिव ये संकर्षण ये शुद्ध सत्वमय है। तो शुद्ध सत्व अवस्था में ये सदाशिव जो ये संकर्षण के स्वरूप हैं, उन्होंने भगवान की लीला के वर्णन कर रहे हैं, भक्तों के पोषण कर रहे हैं, जैसे चार कुमार को उन्होंने भागवतम सुना रहे हैं। लेकिन जब देख रहे हैं कि ये भी एक अनुकंपा है, जैसे मैं भूल गया एक शब्द, जो हम सेलिब्रेट करते हैं कि कृष्ण की जन्माष्टमी बा रामनवमी, ये एक वास्तविक कृपा की एक्सपेंशन है, कि भगवान अपने कृपा को विस्तार करने के लिए ये अवसर देते हैं भक्तों को, ये समझें जन्म कर्म चमे दिव्य। इस अवसर पर हम तो नहीं समझ पाएंगे, हम तो केवल ऐसे ही बोलते रहेंगे भगवान का कर्म दिव्य है, जन्म दिव्य है, लेकिन फास्टिंग रखिए, भगवान के गुणगान कीजिए, उस दिन आपको महसूस होगा कुछ दिव्यता। विशेष जैसे हम एकादशी व्रत रखते हैं, अधिक नाम जप करते हैं, तो हमको महसूस होता है अंदर से कुछ दिव्यता का। तो ये जो संकर्षण है ये गुरु के रूप में कार्य करते हैं, उनका एक्सपेंशन है। हाँ, ये गुरु रूप में भी है, चैत्य गुरु के रूप में, क्योंकि भगवत तत्व को प्रकट करने वाला, जो भगवान कहते हैं ना, ददामि बुद्धि जोगंतम जैनमांग उपजानति ते, तो संकर्षण ही गुरु तत्व है जो बुद्धि जोग को प्रदान करते हैं, और इसलिए वो कृष्ण कथा को अनवरत दिन रात बोलते अनंत मुख से। परंतु शिव और काल भैरव ये तमोगुण के प्रभाव से आते हैं, रुद्र रुद्र और काल भैरव। हाँ, नॉन डिफरेंस है। वास्तविक विष्णु का जो तीन कार्य हैं स्वयं भगवान करते हैं, ऐसे सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेगम, एक शक्ति है, लेकिन वो अलग अलग देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि करते हैं रजगुण के द्वारा, लेकिन पालन कार्य रजगुण से नहीं हो सकता है। तमोगुण के द्वारा भगवान रुद्र को क्योंकि रुद्र तत्व भी उनसे ही क्रिएट होता है। जैसे दूध की संस्पर्श में खट्टीपन आने के कारण क्या हो जाता है, दही बन जाता है, संजायते। तो उसी प्रकार जो गुण क्षोभ होता है, जैसे अहंकार, अहंकार के साथ जब तीन गुण मिलता है तो अलग अलग कार्य करता है। तो जब रजोगुण मिलता है तो सृष्टि होता है अहंकार के साथ, और जब सप्तगुण मिलता है अहंकार के साथ तो पालन होता है, और जब अहंकार के साथ तमोगुण मिलता है तो फिर प्रलय होता है। इसलिए अहंकार सत्व है, मतलब अहंकार कभी नष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद लिखेंगे फॉल्स ईगो रियल ईगो, ईगो कभी नष्ट नहीं होता है। यहां तक भी जब हमको आध्यात्मिक शरीर मिल जाता है वहां भी ईगो है, लेकिन वहां रियल ईगो है कि हम कृष्ण के दास हैं। परंतु यही ईगो जब गुण के संस्पर्श में आता है वो क्रिएशन, मेंटेनेंस, रजिस्ट्रेशन, ये तीन कार्य होते हैं गुण क्या होता है। तो इसलिए तमोगुण का जब प्रभाव होता है तो वही रुद्र के रूप धारण करते हैं, पकाड़ भैरव के रूप धारण करके ये प्रलय करते हैं। इनको शिव तत्व कहा जाता है। जो शिवालय में पूजा होता है, देखिए वैष्णव लोग भी शिव जी की पूजा करते हैं लेकिन अलग तत्व के रूप में, जो संकर्षण व सदाशिव के रूप में उन्होंने महादेव की, क्योंकि वैष्णवानम यथा शंभु, इसलिए वो ब्रह्म संहिता में जस शंभुता शंभु तत्व दी है। उनकी उपेत्य कार्यम मतलब जो विकार रूप होता है ये शंभु की, अर्थात एक्सपेंशन, ये रुद्र तत्व हो जाते हैं। शंभु का जो विकार तत्व होता है ये रुद्र। लेकिन अलग अलग लोग, जैसे काल भैरव की पूजा करता था कौन, रावण। तो मेंटालिटी है किस प्रकार, जो उपासक है किस भावना से कर रहे हैं। जैसे ब्रुकासुर, वो भी शिव जी की आराधना किए अलग भावना से। तो कहते ना जो बहुत सारी कामना से जोड़े हैं तो अन्य देवता की उपासना करते हैं। कौन सा श्लोक है, कामस्तेस्ते हृतज्ञान प्रपद्यन्ति अन्य देवता। अन्य देवता कहने के मतलब है भगवान के साथ संबंधित न देख करके उपासना करते हैं। इसे गोपियां भी पूजा किए, किसकी, कांतायन की, लेकिन योग माया के रूप में। शब्दत है कांतायनी महामाई महाजोगिन अधीश्वरी, लेकिन योग के रूप में। लेकिन ये लोग उपासना करते हैं वियोग, क्योंकि भगवान से अपने चेतना को हटा करके वो अपना इच्छा को पूर्ति करने के लिए ऐसे देवताओं की पूजा करते हैं। और मुझे विशेष पता नहीं है क्योंकि लिंग क्यों पूजा किया जाता है, लेकिन लिंग है कि शिव जी की प्रतिनिधित्व करता है। किस कारण से ये लिंग हुआ, इसमें सब पुराण में है सब कथा, लेकिन भगवान की लिंग जो है ना, मुकुंद लिंगाय दर्शन दृश्य, भक्तों को मुकुंद लिंग कहा गया है। भगवान की जो लिंग स्वरूप है, मुकुंद लिंगाय दर्शन दृश्य लिंग है, ये श्रीधर स्वामी लिखे हैं कि मुकुंद लिंग है भक्त, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है सिद्ध भक्त, इनको अम्बरीश महाराज आलिंग कर। और कोई प्रश्न वसन पीछे,
जिसे बताया कि आपका
क्योंकि कभी कभी हम जैसे सोचते हैं ना, फॉर्मेलिटी मेंटेन करते हैं, हाँ ये एडिकेट्स है, किसी वैष्णव पास अपराध हो जाता है उसको प्रणाम कर दो माफ हो जाएगा, नहीं। क्योंकि भक्ति एक अंतर्निहित भाव है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, भाषा से नहीं। पहले कहते हैं रिपेंट, फिर रियलाइजेशन, पहले पश्चाताप होना चाहिए कि मैं गलती किया हूं, किस प्रकार गलती किया हूं, ये भी सोचना चाहिए। और रियलाइजेशन करना, इतना ही करना चाहिए कि वो एक महान भक्त हैं, उनके पास अच्छे गुण को देखना। जब भी हम कुदृष्टि देखते हैं, किसको कहते हैं सामान्य दृष्टि, एक श्लोक में है ना कि वैष्णव के हम जैसे नरबुद्धि समझते हैं, हाँ ये भी एक साधन है। जैसे अर्जुन कह रहे हैं कि मैं तो ऐसे मानता था मेरे सखा है, मेरे मित्र है, सखेति मत्वा। तो वैष्णव की शरीर एक साधारण मनुष्य नहीं है, माता गंगा जी की जल एक साधारण जल नहीं है, श्री विग्रह कोई मूर्ति नहीं है। गुरु सु नरमति, हम जब कहते हैं कि सारे वैष्णव हमारे गुरु हैं, हम प्रभु करके संबोधन करते हैं और उनकी हम बुराई करते हैं, और कभी हमको फिर रिएक्शन आता है, जप नहीं होता है, चलो फिर प्रणाम करते हैं, माफी मांग। लेकिन ये हम सोचना चाहिए कि उस वैष्णव के गुण न देखने के कारण हमको दोष देखकर समालोचना करके इस स्थिति में पड़ा, लेकिन उनके अच्छे अच्छे गुण को देखना चाहिए। इसलिए वैष्णव का दृष्टि को कहते हैं मधुमक्खी, हंस का दृष्टि परमहंस, कुआ जैसे नहीं होना चाहिए, गंदे मक्खी जैसे नहीं होना चाहिए। यदि आपको भगवत धाम के जाने के विचार हैं, उसख्यया न तथा हंस निरमंती उसख्यया तदवाय सम क्षेत्र, जो ऐसे सिर्फ भक्तों का निंदा करते 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 वे कूड़ा कचड़ा को खाते हैं, और दिन रात बोलते तो रहते हैं लेकिन कौआ जैसे करते हैं। हंस इतना बोलता नहीं है परंतु उनका चिंतन बहुत उच्च है। इसलिए भक्तों को भक्तों के गुण देखें। सबका आदत है दोष, परंतु वैष्णवता को प्राप्त करने के लिए गुण दृष्टि करने का, दर्शन करने का स्वभाव आदत बना, बार बार प्रसिद्धित करें, सत्संग से सुने समझे। ये नहीं कि प्रभु जी के सामने बहुत अच्छा स्तुति किए, बाद में फिर उनकी बुराई किए पीछे, ये तो बड़ी कपटता है। इसलिए तो मुंह से कभी दुर्गुण नहीं करना चाहिए उसका, धीरे धीरे हम सीखे गुण व स्तुति करने के लिए, हाँ अच्छा है प्रभु जी, पीछे भी आगे भी सब प्रकार से, तो फिर थिंकिंग बदलेगा। पहले विलिंग बदलिए, क्योंकि विलिंग के बाद ही थिंकिंग होता है, इच्छा। आपका इच्छा क्या है, उनकी गुणगान करना चाहते कि बुराई करना चाहते, तो फीलिंग भी उसी प्रकार होगा, थिंकिंग भी उसी प्रकार, इच्छा पर है। जो चाहते हैं कि हम ये भौतिक संसार में रहें तो करो, बुराई करो, नरक में जाओ। यदि इच्छा है आपका, विल है कि मुझे भगवान के पास जाना है, भक्तों के समान का, तो भक्तों के गुण देखो, स्थिति का इच्छा पर। और कोई समस्या क्या हो, कमेंट ये स्वर्गदूत जो नित्य प्रलय है ना, प्रतिदिन जो जो पदार्थ का परिवर्तन होता है, हमारा शरीर घटता है, ये नित्य है। नैमित्तिक प्रलय है जो ब्रह्मा जी के एक दिन में होता है, और प्राकृतिक प्रलय है ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद जो होता है, ये प्राकृतिक प्रलय। और आत्यंतिक प्रलय है जो कहते हैं आध्यात्मिक प्रलय, जो यहां तक कि सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व भी नष्ट हो जाता है, अर्थात जीव जब भगवत धाम को प्राप्त करता है उसको कहते हैं आत्यंतिक प्रलय, स्वरूप अवस्था को प्राप्त कर लेता है, भौतिक अस्तित्व को नष्ट करके आधार, ये है आत्यंतिक प्रलय। अनंतरा श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराणी की जय। श्री श्री राधा राधिका रमण जीव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंद हरि हरि।